أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لأهله، الصلاة والسلام على أهلها، ولعنة الله على أهلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام برادران و خواہران کو مناجات کی اس نشست میں خوش آمدید. الحمدللہ، خدا کے فضل و احسان سے ہم نے ماہ مبارک رمضان کے اس فرصت کے لمحات سے استفادہ کرتے ہوئے اس ماہ مبارک رمضان کے سحر کے اس اوقات ان اوقات میں دعا و مناجات سے استفادے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، وہ آپ تمام دوستوں کے تعاون سے اور جو لوگ جو دوست ان کاموں کا انتظام کر رہے ہیں ان سب کے تعاون سے یہ سلسلہ جاری ہے. آج جیسا کہ عرض کیا ہے، ہم نے آغاز کرنا تھا دعائے ابو حمدہ صومالی کا. یہ دعائے ابو حمزہ صومالی، ابو حمزہ صومالی امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو تین ائمہ کے اصحاب میں سے رہے ہیں اور تینوں ائمہ کے قریبی اور وفادار اصحاب میں سے. چوتھے امام کے بھی صحابی ہیں، اسی طرح پانچویں امام کا دور بھی انہیں نصیب ہوا اور چھٹے امام کا دور بھی ان کو نصیب ہوا. تو یہاں آج ہم آغاز کریں گے. یہ دعا ابو حمدہ صومالی نسبتاً ماہ مبارک رمضان کے سحر کے اعمال میں ذکر ہے، اور انشاءاللہ ہم آج شروع کریں گے اس کو. جتنا آج کی نشست میں پڑھ سکے آج پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اس کو مکمل کریں گے. میں اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ مطالب کی طرف پوری توجہ رکھیں گے. بنام خدائے رحمان و رحیم. یہ دعا ابو حمزہ صومالی نے نقل کی ہے چوتھے امام سے، اور ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام رمضان المبارک کی راتیں نماز میں گزارتے اور سحری کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے. جس طرح دعائے کمیل مولا علی کے شاگرد اور آپ کے صحابی جناب کمیل ابن زیاد نخعی کی روایت ہے، اسی طرح یہ دعا چوتھے امام کے صحابی جناب ابو حمزہ صومالی نے نقل کی ہے. بنام خدائے رحمان و رحیم. میرے اللہ، مجھے اپنے عذاب میں گرفتار نہ کر اور مجھے اپنی قدرت کے ساتھ نہ آزما. مجھے کہاں سے بھلائی حاصل ہو سکتی ہے اے پالنے والے، جبکہ وہ تیرے سوا کہیں موجود نہیں. اور مجھے کہاں سے نجات مل سکتی ہے جبکہ اس پر تیرے سوا کسی کو قدرت حاصل نہیں. نہیں نیکی کرنے میں تیری مدد اور رحمت سے بے نیاز ہوں، اور نہیں کوئی برائی کرنے والا، نہیں کوئی نیکی کرنے والا تیری مدد اور رحمت سے بے نیاز ہے، نہیں کوئی برائی کرنے والا تیرے سامنے جرت کرنے والا، اور تیری رضا جوئی نہ کرنے والا تیرے قابو سے باہر ہے. خدایا، نہ نیکی کرنے والا تیری رحمت اور مدد سے بے نیاز ہے، اور نہ ہی برائی کرنے والا تیرے قابو سے باہر ہے. ایسا نہیں ہے کہ تو برائی کرنے والے کو فوراً سزا نہیں دے سکتا، بلکہ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے اس موضوع کو بیان کیا ہوا ہے کہ یہ اگر نافرمانوں کو جو مہلت ملتی ہے تو یہ مہلت دراصل ان کے لیے ایک آزمائش ہے کہ شاید एहसास हो और पलट कर बारगाह खुदाबंदी में लौट आए, और या फिर अपने लिए मजीद अजाब को उसका बायस बने उनके अमाल। इसके बाद या रब्बी कहा है इमाम ने, और जो रवायत है कि इतनी मर्तबा कहा कि जब तक सांस टूट नहीं गया, एक सांस में जितना कहा जा सकता है। तो इंशाल्लाह आप सब भी मेरे साथ कहेंगे और एक सांस में जितना हम कह सकें या रब्बी कहना है, या रब्बी। ए पालने वाले, मैंने तेरे ही जरिए तुझे पहचाना, तूने अपनी तरफ मेरी रहनुमाई की और मुझे अपनी तरफ बुलाया है, और अगर तू मुझे न बुलाता तो मैं समझ ही न सकता कि तू कौन है। हम्द है उस खुदा के लिए, जिसे पुकारता हूं तो वो जवाब देता है, अगर जब वो मुझे पुकारे तो मैं सुस्ती करता हूं। हम्द है उस अल्लाह के लिए, जिससे मांगता हूं तो मुझे अता करता है, अगरचे वो मुझसे कर्ज का तालिब हो तो कंजूसी करता हूं। यानी खुदा ने जैसा कि कुरान में कहा है, मन युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फयुदाइफ़हु लह, कौन है कि जो अल्लाह को कर्ज हसना दे, खूबसूरत कर्ज दे कि अल्लाह उसको दुगना कर दे, अल्लाह उसको कई गुना बढ़ा दे। तो यहाँ कि खुदा जब मैं तुझसे कुछ मांगता हूँ तू मुझे अता कर देता है, लेकिन जब तू तलब करता है मुझसे कि तेरी राह में खर्च करूँ, अपने वाजिबात अदा करूँ, सदकात करूँ, माशरे की ज़रूरतें पूरी करूँ, तो उस वक़्त मैं बुखल से काम लेता हूँ, मैं तो कंजूसी करता हूँ। हम थे उस अल्लाह के लिए कि जब चाहूँ उसे अपनी हाजत के लिए पुकारता हूँ, और जब चाहूँ तन्हाई में बगैर किसी सिफारिशी के उससे राज व नियाज करता हूँ। यानी खुदा को पुकारना जब चाहे तन्हाई में बगैर किसी सिफारिशी के। याद रखिएगा, बाज लोग इस तरह का नजरिया रखते हैं और ये दुरुस्त नहीं है कुरान और रवायात की रूह से, कि जैसे खुदा को डायरेक्ट पुकारना, खुदा से डायरेक्ट मांगना ये मुमकिन नहीं है। बाज लोग इस तरह की बात करते हैं कि क्या हमारी शक्ल है कि हम अल्लाह से डायरेक्ट मांगे, अल्लाह से डायरेक्ट राज व नियाज करें। अजीज मन, ऐसा गलत है अगर ऐसा सोचते हैं तो। वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करना, मासूमीन के वास्ते से उनके वसीले से दुआ करना, ये अपनी जगह अलग वाकई मौजू है। लेकिन जैसा कि इमाम अलैहिस्सलाम यहाँ फरमाते हैं कि जब चाहूँ अपनी हाजत के लिए पुकारता हूँ, जब चाहूँ तन्हाई में बगैर किसी सिफारिशी के उससे राज व नियाज करता हूँ। लिहाजा खुद खुदा को डायरेक्ट पुकारना और खुद खुदा से राज व नियाज करना, इसमें कोई ममानियत नहीं है। जैसा कि अर्ज किया, वास्ता पेश करना, वसीला पेश करना, उसकी अपनी जगह है। तो वो बगैर किसी सिफारिशी के उससे राज व नियाज करता हूँ तो वो मेरी हाजत पूरी करता है। हम्द है उस अल्लाह के लिए, जिसके सिवा मैं किसी को नहीं पुकारता, और अगर उसके गैर से दुआ करूँ तो वो मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा। हम्द है उस अल्लाह के लिए, जिसके गैर से मैं उम्मीद नहीं रखता, और अगर उम्मीद रखूं भी तो वो मेरी उम्मीद पूरी नहीं करेगा। हम्द है उस अल्लाह के लिए, जिसने अपनी सुपुर्दगी में लेकर मुझे इज्जत दी और मुझे लोगों के सुपुर्द न किया कि मुझे जलील करते। हम्द है उस अल्लाह के लिए, जो मुझसे मोहब्बत करता है अगरचे वो मुझसे बेनियाज है। अल्लाह अपने मखलूक से मोहब्बत करता है, अल्लाह अपने हर बंदे से मोहब्बत करता है, चाहे गुनाहगार ही क्यों ना हो। खुदा को बंदे गुनाहगार की तौबा का इंतजार रहता है। अजीजा ने मन, खुदा ने अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत के साथ मिसाल के साथ पेश किया। एक माँ अपने बच्चे से कितना कितनी मोहब्बत करती है, कितना प्यार करती है। और खुदा ने अपनी मोहब्बत को समझाने के लिए कहा कि मैं 70 माओ जितना प्यार करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 70 माओ जितनी मोहब्बत जोड़ दी जाए तो खुदा की मोहब्बत बन जाएगी, ना। 70 का वही असल में कसरत के लिए है कि तुम एक माँ की मोहब्बत को देखो, इससे कई गुना ज्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। खुदा बंदे से मोहब्बत करता है, और ये मोहब्बत ही तो है ना, कि खुदा का मौका देना। खुदा कुदरत रखता है कि अपने बंदे पर अजाब करे, अपने बंदे को सजा दे, अपने बंदे की गलतियों के ऊपर मुआखजा करे, लेकिन मोहलत देना और फिर तौबा का दरवाजा भी खुला रखना, ये मोहब्बत नहीं तो क्या है खुदा की। हम्द है उस अल्लाह के लिए जो मुझसे इतनी नरमी करता है जैसे मैंने कोई गुनाह ना किया हो। बस मेरा रब मेरे नजदीक हर चीज से ज्यादा काबिल तारीफ है, और वो मेरी हम्द का ज्यादा हकदार है। ए माबूद, मैं अपने मकासद की राहें तेरी तरफ भी मैं अपने मकासद की राहें तेरी तरफ खुली हुई पाता हूँ, और उम्मीदों के चश्मे तेरे यहाँ भरे पड़े हैं। हर उम्मीदवार के लिए तेरे फजल से मदद चाहना आजाद और रवा है, यानी हर उम्मीदवार तेरे फजल से मदद तलब कर सकता है, कोई कैद नहीं है, आजाद है, ये दरवाजा खुला हुआ है। और फरियाद करने वालों की दुआओं के लिए तेरे दरवाजे खुले हैं, और मैं जानता हूं कि तू उम्मीदवार की जाए कबूलियत है, तू मुसीबत जदों के लिए फरियाद रसी की जगह है। मैं जानता हूं कि तेरी सखावत की पनाह लेना और तेरे फैसले पर राजी रहना कंजूसों की रोक टोक से बचने और खुद गर्ज मालदारों से महफूज रहने का जरिया है। यानी अगर तेरे फैसले पर राजी रहें कि जो तूने मुझे अता किया है, अगर उस पर मैं राजी और खुश हो जाऊं, तो ये राजी होना अल्लाह के फैसले पर ये रास्ता है, ये तरीका है, किस चीज का ये जरिया है, किस चीज का, कंजूसों की रोक टोक से बचने का और खुद गर्ज मालदारों से महफूज रहने का। यानी इंसान अगर अल्लाह के दिए पर राजी ना रहे और फिर हाथ फैलाए, फिर दूसरों के सामने सवाल करे, दस्त सवाल दराज करे, तो फिर क्या होता है, खुद गर्ज मालदार और कंजूसों की रोक टोक, कि इंसान देंगे तो कम देंगे और देने के बाद एहसान जताएंगे। और इंसान को जैसे कि बहुत बड़ा एहसान करने जैसे कि बहुत बड़ा एहसान किया हो, चाहे करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, ये होता है इंसानों के अंदर। और इसमें बस जमीन ने एक नुकता समझ लीजिएगा, अल्लाह के फैसले पर राजी रहना, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम मेहनत ना करें, इंसान कोशिश ना करे, इंसान काम ना करे। इंसान मेहनत करे, जितनी मेहनत का उसके पास गुंजाइश है, जितने काम की उसके पास गुंजाइश है, वो जरूर करे, अमली हरकत करे, उसके बाद जो खुदा ने दिया है उस पर राजी रहे। बस तेरी सखावत की पनाह लेना और तेरे फैसले पर राजी रहना, कंजूसों की रोक टोक से बचने और खुद गर्ज मालदारों से महफूज रहने का जरिया है। नेज ये कि तेरी तरफ आने वाले की मंजिल करीब है और तू अपनी मखलूक से ओझल नहीं है, मगर उनके बुरे अमाल ने ही उन्हें तुझ से दूर कर रखा है। बाज अजीब है, यानी खुदा तू दूर नहीं है, तू अपने बंदों से ओझल नहीं है। अगर कोई बंदा खुदा से दूर नजर आता है तो वो अपने गुनाहों और कोताहियों की वजह से अपने बुरे अमाल ने उसको खुदा से दूर कर रखा है। लेकिन अगर वो पलटना चाहे, लेकिन अगर वो लौटना चाहे, तो जैसे कि पिछले जुमले में आया, तो तेरी तरफ आने वाले की मंजिल करीब है, बस एक दफा पलटना है, खुदा से मगफिरत तलब करनी है, सच्चे दिल से माफी तलब करनी है, और आइंदा उन बुराइयों की तरफ नहीं जाना, फिर आसान है खुदा की तरफ पलटना। बस जिनके लिए मुश्किल लगता है, तो खुदा की तरफ पलटना मुश्किल नहीं है, उन बुरे अमाल का तर्क करना उन लोगों के लिए मुश्किल लगता है। मैं अपनी तलब लेकर तेरी बारगाह में आया और अपनी हाजत के साथ तेरी तरफ मुतवज्जे हुआ हूँ। मेरी फरियाद तेरे हुजूर में है, मेरी दुआ का वसीला तेरी ही जात है, जबकि मैं इसका हकदार नहीं कि तू मेरी सुने, और मैं इस काबिल हूं कि तू मुझे माफ करे, अलबत्ता मुझे तेरे करम पर भरोसा और तेरे सच्चे वादे पर उम्मीद है, एतमाद है, तेरी तौहीद पर ईमान मेरी पक्की सच्ची पनाह है, और तेरे बारे में मुझे अपनी मारिफत पर यकीन है, तेरे सिवा मेरा कोई पालने वाला नहीं, और तू ही सिर्फ यगाना है, तेरा कोई शरीक नहीं। ए माबूद, ये तेरा फरमान है, और तेरा कहना दुरुस्त और तेरा वादा सच्चा है, कि अल्लाह से उसका फजल मांगो। ये कुरान की आयत को इमाम अलैहि सलाम ने इस दुआ के अंदर इसको शामिल किया है, वसअलुल्लाह मिन फजलिही इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। इमाम कहते हैं कि ये माबूद, ये तेरा फरमान है और तेरा कहना दुरुस्त और तेरा वादा सच्चा है, कि अल्लाह से उसका फजल मांगो, बेशक अल्लाह तुम पर बड़ा मेहरबान है, और ए मेरे सरदार, ये बात तेरे शायान शान नहीं, तेरे शान से बईद है कि तू मांगने का हुक्म दे और अता ना करे। तू अपनी मुमलिकत के बाशिंदों को बहुत बहुत अता करने वाला है, और अपनी मेहरबानी और नरमी से उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ है, मुतवज्जे है। ए अल्लाह, खुद आप अंदाजा करें, अर्जान मोहतरम, मैंने पहले भी अर्ज किया, मकतब अहले बैत तौहीद के बारे में किस कदर गनी है, किस खूबसूरती के साथ तौहीद मकतब अहले बैत में बयान हुई है। इतनी खूबसूरती के साथ किसी मकतब के अंदर तौहीद की ये मौजूआत मौजूद नहीं है, और अफसोस और परेशानी का और लम्हे फिक्रिया उस वक्त है कि जब इतने बेहतरीन मतालब तौहीद के हमारे पास मौजूद हैं, और फिर अगर हम देखें कि हमारी तौहीद कमजोर हो, हमारा अकीदे तौहीद, नजरिए तौहीद कमजोर हो, ये इंतहाई अफसोसनाक मौका और मरहला है। लिहाजा इस तरफ हमें मुतवज्जे रहना है, और इन दुआओं के अंदर भी आप लोग मुतवज्जे रहें कि जितना खुदा से बात की जा रही है, जिस तरह खुदा से कलाम किया जाता है, हम अपनी जिंदगियों में साथ साथ जायजा लें कि हमारी जिंदगियों में किस कदर तौहीद का अमल दखल है, कितना हम खुदा से नजदीक हैं। ए अल्लाह, अब देखिएगा दुआ का लब्ज़ लहजा, ए अल्लाह, जब मैं बच्चा था तूने मुझे अपनी नेमत और एहसान के साथ पाला, और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे शोहरत अता की, लोग मुझे जानने लगे, लोग मेरा एहतराम करने लगे, लोग मुझसे मेरे साथ बात करने लगे, मेरे साथ दोस्ती करने लगे। तूने मुझे जब जवान हुआ, तूने मुझे बड़ा हुआ तो तूने मुझे शोहरत अता की, बस ए वो जात जिसने दुनिया में मुझे अपने एहसान एहसान नेमत और अता से पाला, और आखिरत में मुझे अपने अफ़ो करम का इशारा दिया है, ए मेरे मौला, मेरी मारिफत ही तेरी तरफ मेरी रहनुमा है, और मेरी तुझसे मोहब्बत तेरे सामने मेरी सिफारिशी है, और मुझे तेरी तरफ ले जाने वाले अपने उस रहबर पर भरोसा, और तेरे हुजूर शिफात करने वाले अपने शफी पर इत्मीनान है। इन खुदाया, इस तौहीद के बारे में मेरी मारिफत ने मेरी रहनुमाई की, मेरी अकल जो तस्लीम करती है तेरी तौहीद को, मेरी रहनुमाई की उसने, और जो मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ ये मेरी सिफारिशी है तेरे नजदीक, और मुझे अपने उस रहबर पर भरोसा है कि जो मुझे तेरी तरफ ले जाने वाले हैं, और तेरे हुजूर शिफात करने वाले अपने शफी पर इत्मीनान है, यानी रसूलुल्लाह पर, मासूमीन पर। ए मेरे सरदार, मैं तुझे उस जुबान से पुकारता हूँ जो गुनाह की वजह से लुकनत करती है। पालने वाले, मैं उस दिल से राजगोई करता हूँ जिसे उसके जुर्म ने तबाह कर दिया। ए पालने वाले, मैं तुझे पुकारता हूँ लेकिन सहमा हुआ, डरा हुआ, चाहता हुआ, उम्मीद रखता हुआ, यानी अदऊ का या रब्बी राहिबन रागिबन राजियन खाइफन, इजा रायतु मौलाया ذنوبي فزعت و اذا رايت كرمك طمعت فان عفوت فخير راحم وان عذبت فغير ظالم। जब मेरे मौला, जब मैं अपने गुनाहों को देखता हूं तो घबराता हूं, और तेरे करम पर नगाह डालता हूं तो आरजू बढ़ती है। बस अगर तू मुझे माफ करे तो तू बेहतरीन रहम करने वाला है, और अजाब दे तो भी तू जुल्म करने वाला नहीं है। इन अगर तू मुझ पर अजाब करेगा तो ऐसा नहीं है कि तू जालिम होगा, तेरा अजाब करना ऐन अदल है। मैंने खुद को इस काबिल बना दिया था, मैंने अपने आप को इस दर्जे पर पहुंचा दिया था कि मुझ पर अजाब होता। ए अल्लाह, जो काम तुझे नापसंद है वो अंजाम देने के बावजूद तुझसे सवाल करने की जुरत में तेरा जूद व करम ही मेरी हुज्जत है, और हया की कमी के बावजूद सख्ती के वक्त मेरा सहारा तेरी ही मेहरबानी और नर्म रवि है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ऐसी वैसी बातों के होते हुए भी तू मुझे मायूस ना करेगा। बस मेरी उम्मीद बर ला और मेरी दुआ सुन ले। ए पुकारे जाने वालों में सबसे बेहतर, और जिनसे उम्मीद की जाती है उनमें सबसे बदनतर, यानी खुदाया मैं अगर अपने गुनाहों और खताओं के बावजूद तुझे पुकारता हूँ तो इसमें जो मेरा हौसला बढ़ाया है वो तेरे फजल व करम ने बढ़ाया। मैं अपने गुनाहों की तरफ जब निगाह करता हूँ तो मेरे अंदर मायूसी वाली कैफियत आती है कि मैं कितना गुनहगार हूँ, लेकिन जब मैं तेरी रहमत और तेरे फजल की तरफ निगाह करता हूँ तो फिर मुझे उम्मीद बनती है कि तू यकीनन मुझे माफ करेगा। बस शराइत जो है वो इसके ऊपर लागू है कि भाई अगर मैं वापस आऊं तेरी तरफ, छोड़ के आऊं बुरे रास्ते को, बुरी आदत को, बुरे अमाल को, अगर छोड़ के वापस आ जाऊं तो तू मेरे पिछले गुनाहों की वजह से मुझ पर अजाब नहीं करेगा अगर मैं वापस आ गया तो, इसमें कोई शक नहीं है। बस मेरी उम्मीद भर ला, मेरी दुआ सुन ले। ए पुकारे जाने वालों में सबसे बेहतर, और जिनसे उम्मीद की जाती है उनमें सबसे बुलंदतर। ए मेरे आका, मेरी आरजू बड़ी और मेरा अमल बुरा है, बस अपने अफ से काम लेकर मेरी आरजू पूरी फरमा और बुरे अमल पर मेरी गिरफ्त ना कर, क्योंकि तेरा करम गुनाहगारों की सजाओं से बहुत बुलंद व बाला है, और तेरा हिल्म कोताही करने वालों की सजाओं से अजीम तर है। और ए मेरे सरदार, मैं तेरे खौफ से भाग कर तेरे फजल की पनाह लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिसने तुझसे अच्छा गुमान रखा है उससे दरगुजर का वादा पूरा फरमा, यानी खुदा, वही आपने कुरान में भी हमने इस मौजू पर बात की कि जो खुदा से अच्छा गुमान रखे कुदरत इलाही उसके साथ उसी तरह का सलूक रखती है। इसीलिए यहाँ कहा कि जिसने तुझसे अच्छा गुमान रखा है उससे दरगुजर का वादा पूरा फरमा। ए मेरे परवरदिगार, मैं क्या और मेरी औकात क्या, तू ही अपने फजल से मुझे बख्श दे और अपने अफ से मुझ पर इनायत फरमा। ए मेरे रब, मुझे अपनी पर्दा पोशी से ढांप और अपने खास करम से मेरी सरजनिश टाल दे। अगर आज तेरे सिवा कोई दूसरा मेरे गुनाह को जान लेता तो मैं ये कभी ना करता, तो जरूर गुनाह से दूर रहता। लेकिन इसकी वजह ये नहीं, यानी देखिए खुदा, अगर मुझे पता चलता कि जब मैं गुनाह करता हूँ, अगर मुझे पता चले कि मेरा गुनाह देखने वाला इंसानों में से भी कोई है, तो मैं गुनाह से बचूं। हत्ता कि इंसान अगर कोई गलती गुनाह करने लगे तन्हाई में, और उसे लगे कि कोई छोटा बच्चा देख रहा है, तब भी वो उस गुनाह से बचता है। उसी कैफियत को यहाँ पर बयान किया कि अगर, और इसी तरह जल्द सजा मिलने का होता खौफ, तब भी गुनाह ना करता। लेकिन खुदा से उम्मीद हुई है कि खुदा जल्द सजा नहीं देता, खुदा की आदत नहीं है। तो इमाम फरमाते हैं, देखें किस अंदाज के साथ, अगर मुझे जल्द सजा का खौफ होता तो जरूर गुनाह से दूर रहता। अच्छा, ये जो मेरी कैफियत है कि कोई मुझे देखता तो मैं गुनाह ना करता, लेकिन इसकी वजह ये नहीं कि तू देखने वालों में कमतर और जानने वालों में कम रुतबा है। लेकिन ऐसा नहीं है खुदाया कि मैं अगर इंसानों के देखने की वजह से गुनाह से बचता तो मुझे तेरे देखने का यकीन नहीं है, या मैं तुझे उनसे कमतर समझता हूँ। ऐसा नहीं है खुदा, ए मेरे परवरदिगार, इस वजह से नहीं कि देखने वालों में कमतर और जानने वालों में कम रुतबा है, बल्कि उसकी वजह ये है ए परवरदिगार कि तू बेहतरीन पर्दापोश, सबसे बड़ा हाकिम और सबसे ज्यादा करम करने वाला, ऐबों को ढांपने वाला, गुनाहों का माफ करने वाला, छुपी बातों का जानने वाला है। तू अपने करम से गुनाह को ढांपता है और अपनी नरम खुई से सजा में ताखीर करता है। बस हम्द है तेरे लिए कि जानते हुए नरमी से काम लेता है, तेरी हम्द है कि तू तबाना होते हुए माफ करता है, और मेरे साथ तेरी नर्म रवि है जिसने मुझे तेरी नाफरमानी पर आमादा किया है। तेरा मेरा मेरी पर्दापोशी करना मुझ में हया की कमी का मौजिब बना है, और तेरी वसी रहमत और अजीम अफ की मारिफत के बायस मैं तेरे हराम किए हुए कामों की तरफ जल्दी करता हूँ। ए नर्म खो, ए मेहरबान, ए जिंदा, ए निगहबान, ए गुनाह माफ करने वाले, ए तौबा कबूल करने वाले, ए अजीम अता वाले, ए कदीम एहसान वाले। यहाँ पर मैं इख्तिताम करता हूँ इंशाल्लाह। ये एक जलीलुल कदर और तवील दुआ है, इंशाल्लाह हम इसको इसी अंदाज में अपने इस टाइम के अंदर जितना जितना पढ़ सके हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बस एक गुजारिश जो अक्सर मैं कर रहा हूँ कि दुआओं के मतालिब की तरफ मुतवज्जे रहिएगा, और यही जरिया है हम अपने नजरियात को, हम अपनी तौहीद के अकीदे को मजीद पॉलिश कर सकते हैं, उसको मजीद बेहतर कर सकते हैं, अगले मराहिल में दाखिल हो सकते हैं। लिहाजा दुआओं के मतालिब की तरफ मुतवज्जे रहिएगा, और यहाँ जिस दुआ को हम पढ़ते हैं, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो अपनी जिंदगी में उस दुआ को शामिल जरूर कीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, हम दुआ सलामती में जबान से अख्तिताम करेंगे। सवाल अगर कोई है तो आप पूछ सकते हैं। जी, दुआ सलामती में जबान से अख्तिताम करते हैं। अगर इंशाल्लाह आपके लिए जो ऐलान हम कर रहे हैं कि रात 8 से 9 दरस कुरान होता है, और ये 4:15 से 4:45 तक दुआ मुनाजात की नशिस्त, आपको इंशाल्लाह दावत है कि आप इन दोनों में ज़रूर शामिल हों, और माह मुबारक रमज़ान को कुरान की तिलावत और अल्लाह से राज़ो नियाज के साथ हमारे साथ इन उमूर में शामिल हो जाएं। दुआ सलामती में ज़मान से अख्तिताम करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك التوعى وتمتعه فيها طويلا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.